ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गोरखपुर 6 जून 1942। असली त्याग की बात सुनो, फिर ये पाठ कौन पढ़ावेगो, ये शीर्षक है। वास्तव में जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं वह इन मान बड़ाई आदि से खूब सावधान रहते हैं और आगे भी सावधान ही रहेगा। वह इस बात को नहीं समझेगा कि मेरा शरीर पूजने लायक है। ये बात महात्माओं की बात है। महात्मा लोग इस बात का ज्ञान रखते हैं। भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो भी ये बात श्रेष्ठ है, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तब भी श्रेष्ठ है। भक्त है उसकी कोई पूजा करेगो तो वो रोवेगो। वह सबको नारायण समझता है। वह पूजा कैसे करवा सकता है? रोवेगो कि देखो भगवान मेरी पूजा करे, बटन काट दिया, उसकी कोई पूजा करेगो तो वो रोवेगो। वो सबको नारायण समझता है। नारायण से पूजा कैसे करवावे? वो समझता है कि नमस्कार पूजा करने योग्य तो भगवान है। असल में मेरे कहने का मतलब यह है कि जो झूठ मूठ भक्ति की बात करते हैं वे ही भगवान को अलग हटाकर अपनी पूजा करवाते हैं। जैसे धोखाबाज गुमास्ता होता है, वो मालिक का धन स्वयं हड़प लेता है, व्यापार का घाटा बताता है कि साहब घाटा हो गया, और अंदर ही अंदर वो रुपया हड़पता है। ऐसे ही झूठ मूठ के भगत होते हैं। गणेशाय नमः। दान देने की बात है। बहुत ऊंचे कोटि के महापुरुष होते हैं, वे अपने चरणों का जल दूसरों को नहीं देते, न अपना फोटो ही देते हैं। इसमें क्या गुप्त रहस्य है वो अभी आपको पूरा पता नहीं है, वो आपको बताया जाता है। प्रसाद का फल तो गीता में बताया ही है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। चित्त की जो प्रसन्नता होती है उसका नाम प्रसाद है। तो ईश्वर और महात्माओं की जो दया है वो दया का नाम प्रसाद है। ईश्वर और महात्मा के लगाया हुआ भोग है उसका नाम प्रसाद है। प्रसाद का फल होना चाहिए सारे दुखों का अभाव होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तब तो देखो वो प्रसाद है, नहीं तो प्रमाद है। शेर जी की बात में स्पष्ट कहने में कभी चूकते नहीं थे, कोई भला मानो चाहे कोई बुरा मानो। समझ में आया ना कि भगवान की और महात्मा की जो दया है, दया का नाम प्रसाद है। और भगवान की प्राप्ति हो जाए तब वो प्रसाद कहलाता है, नहीं तो प्रमाद है। यदि कोई महापुरुष है उसके चरणों में हमने जल चढ़ाया और चरणों का जल हमने ले लिया, तो हमें उसी समय भगवत प्राप्ति होनी चाहिए पर नहीं होती है, तो ये हम महात्माओं के लिए और शास्त्र के लिए कलंक लगाते हैं। आप तो दूर हट जाओगे कि देखो हमने तो महात्मा का जल लिया, चरण का जल लिया और हमारा कल्याण नहीं हुआ, तो महात्मा को झूठा पटक दिया, शास्त्रों को झूठा पटक दिया। क्योंकि लोग कहेंगे कि शास्त्र मिथ्या है या महात्मा मिथ्या है, ये काय का महात्मा है, चरणों का जल लिया हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वही काम वही क्रोध वही लोग, कल थे वैसे याद है। महात्मा होगा वो इस प्रकार के पाखंड के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो ये क्यों करवाएगा। शिष्य यदि पात्र हो तो वो अपनी साधना से महात्मा अपने आप ही बन जाएगा, और यदि वो कुपात्र है तो पानी से जल के पानी से क्या होगा। महात्मा का विचार स्पष्ट रहता है। महात्मा यदि ईश्वर का भगत है तो वह इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके चरणों का जल दूसरा लेवे। चरणों की रज चरणों का जल महात्मा इसलिए नहीं लेने देते कि हमारे कलंक लगे तो भले ही लगे, शास्त्र के कलंक नहीं लगना चाहिए, इसलिए वे अपने फोटो को पुजवाते नहीं हैं। वे समझते हैं कि हमारे हाथ से छुआ हुआ जल है उसमें ऐसी क्या विशेषता है, कुछ विशेषता नहीं है, ये हाथ तो हार्ड मास का है। भगवान का सच्चा भक्त तो भगवान की ही पूजा करते, भगवान को ही पूजाते हैं, कहते हैं भगवान की पूजा करो, उनके चरणों का जल ले ओ, कल्याण होगा। अच्छे महापुरुष होते हैं वे अपने को पुजवाते नहीं, जो पुजवाते हैं हमारे हृदय की बात पूछो तो वे महात्मा है ही नहीं। हम पुत्र को उसके माता पिता की सेवा करने के लिए मना नहीं करते, पति को अपनी स्त्री से सेवा कराने की मनाई नहीं करते, गुरु को शिष्य से पूजा कराने की मनाई नहीं करते, परंतु वे अपने को महात्मा मत समझो, महात्मा समझ करके मत पूजवाओ। माँ है हम, बाप है, बेटे का कर्तव्य है पूजा करने का, करो, हम भी कहते हैं करो। पति की पूजा स्त्री करे हम भी कहते हैं, पर पति अपने को महात्मा न माने माता पिता अपने को महात्मा नहीं माने। शिष्य का कर्तव्य गुरु की पूजा करना, पर गुरु को चाहिए कि वो अपने को महात्मा नहीं माने। महात्मा पुरुष होते हैं वे मान बड़ाई को विष्ठा के समान समझ करके उस मार्ग की तरफ जाते ही नहीं। जैसे अपने को पता चले कि आगे बहुत गंदगी का ढेर है तो हम उस मार्ग की तरफ झांकना नहीं चाहते, इसी प्रकार मान प्रतिष्ठा वाले मार्ग से महात्मा को बड़ी घृणा होती है। नहीं समझा, नहीं जाने, नहीं जाते। हर एक को समझना चाहिए, हर एक भाई को समझना चाहिए, मान के लायक, बड़ाई के लायक एकमात्र भगवान है। अपने शरीर को सबके चरणों की धूली समझना चाहिए, अपने को तुच्छ समझो, छोटा समझो, और समझे ये शरीर तो वही नाश होने वाला है, इसकी हड्डियां हैं, एक दिन यूं ही जमीन पर लुढ़कती फिरेंगी, तो हम सबके चरणों की धूली हुई ना। इस प्रकार सबके चरणों की धूली बनकर रहो, उस समय तो आपको परवस्था से धूली होना पड़ेगा, अभी आप विचार से यदि धूली बन जाओ तो कितना आपके हृदय से मान बड़ाई का भाव समाप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति मान बड़ाई से बहुत संकोच करता है। एक विरक्त पुरुष थे, शहर की तरफ जा रहे थे, लोगों ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी प्रणाम किया। लोगों ने कहा, महाराज आप भार हमारे पर क्यों चढ़ाते हो? तो संतों ने कहा, आप भी हमारे पर भार क्यों चढ़ाते हो? बिल्कुल महाराज जी की आई है कैसेट में बात। लोगों ने कहा, महाराज आप तो त्यागी हो, इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो उन महाराज ने कहा, आप मेरे से बढ़कर त्यागी हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। लोगों ने पूछा, हम? ये आप क्या कह रहे हैं? हम कैसे आप त्यागी महाराज? महाराज ने कहा, अरे सुनो, इस संसार में सबसे बढ़कर क्या चीज है? एक परमात्मा ही तो है ना। हां परमात्मा है। तो सबसे बढ़कर जब परमात्मा है तो हम त्यागी कैसे हुए? त्यागी तो कोई बड़ा होता है, वो होता है। लोगों ने कहा, आपने कंचन कामिनी भोग पदार्थ का त्याग कर दिया। तो संतों ने कहा, ठीक है, आपने ईश्वर का त्याग कर दिया। लोग, नहीं, ईश्वर का त्याग कहां किया है महाराज? उसे तो पकड़ रखा है। तो महाराज, तो बड़ी चीज का तो आपने ही त्याग किया है, आप बड़े त्यागी हैं, आप नमस्कार करने लायक हैं। त्यागी है, आप नमस्कार करने लायक हैं, आपने बड़ी चीज का त्याग किया। लोगों ने कहा, हम आपको महात्मा समझकर प्रणाम करते हैं। महाराज ने कहा, महात्मा का लक्षण सुना है क्या? लोगों ने कहा, सुना है। क्या सुना है? बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। सुना है हमने। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तो महात्मा नहीं हूं, पर तुम कहते हो तो ठीक है। महात्मा की बुद्धि होती है सब में परमात्मा के दर्शन करने की, तो मैं तुम्हें परमात्मा समझकर प्रणाम करता हूँ। अब बोलो वासुदेव सर्वम समझ करके आप वासुदेव हुए कि नहीं? जो अपने को श्रेष्ठ मानता है, पूज्य समझता है, वह महात्मा नहीं महातमा है, महान तमोगुण से भरा हुआ है, बहुत नीचे दर्जे का है। ये किसके लिए हम कह रहे हैं? हम महात्माओं के लिए नहीं कह रहे हैं, हम श्रेष्ठ तत्वज्ञ महापुरुषों के तो चरणों में शीश नवाते हैं, उनके लिए नहीं कह रहे हैं। हम उनके लिए कह रहे हैं जो महात्मा बनकर पाखंड फैलाते हैं। मान बढ़ाई ये सब तुम्हारे लिए बड़ी घातक चीज है। उच्च कोटि के साधक इसे घातक मानते हैं, फिर भी अंदर ही अंदर गहराई में देखें तो वे भी मान बढ़ाई का खुश मान बढ़ाई का सुख भोगते हैं। मान बढ़ाई होने पर अंदर ही अंदर खुश होते हैं। ये बीमारी बहुत गहरी छिपी हुई रहती है। ऊपर से तो कह देंगे हमें मान नहीं चाहिए, बड़ाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर खुशी क्यों होती है? यदि आपका अपमान हो तो उस समय आप अंदर से दुखी क्यों होते हो? बहुत सावधान रहो, यदि मान बढ़ाई में फंस जाओगे तो डूब जाओगे। मान बढ़ाई को स्वीकार करना है, ये गले में पत्थर बांध करके डूबना है। हम तो और आगे की बात बोलते हैं, एक तरफ मृत्यु आवे और एक तरफ मान बढ़ाई आवे तो मान बढ़ाई से डरो, मृत्यु से मत डरो। वाह, क्योंकि मृत्यु तो भगवान कहते हैं मैं खुद हूं। मान बढ़ाई को भगवान ने नहीं कहा है कि मैं ही मान बढ़ाई हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, प्राणियों का जन्म भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। मान बढ़ाई से डरकर भागो और मृत्यु से गले लग जाओ। मरने का समय आए तो खूब आराम से मरो, पर मान बढ़ाई का जहर खाकर मत मरना। ज्ञानी है और अपने को पुजवाता है, अब उसको क्या कहें? वो महा अज्ञानी है, कहां से ज्ञानी है? वो ज्ञानी है ही नहीं। देह की पूजा से प्रसन्न होता है तो संबुद्धि का हुई। ज्ञानी के लक्षण देखो, मानापमानयो स्तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सउच्यते। ये जो सामने दीवार है इसका कोई मान करो और चाहे अपमान करो, दीवार में क्या फर्क पड़ता है? इसी प्रकार इस देह में चेतन के रहते हुए जो मान अपमान में सम रहता है वो जीवन मुक्त है। कितना ही कोई मान करेगा तो शरीर तक पहुंचेगा, और कितना ही कोई बड़ाई करेगा तो नाम की, तो नाम लेकर की तो बड़ाई करेगा, तो मान हुआ शरीर का, नाम हुआ बड़ाई हुई नाम की, तुम्हारा क्या लेना देना? तुम बीच में फंस रहे हो। मुर्दा है जलाने के लिए खूब लोग आ गए, खूब सम्मान हो गया, और मुर्दे को जलाने के लिए कोई चार पांच सात आदमी आए, कोई बड़ा मान नहीं हुआ, जलने में दोनों बराबर, राख होने में दोनों बराबर हैं, क्या फायदा हुआ? दोनों मुर्दों को तो मान अपमान मिला ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि जीता हुआ मुर्दा बन जाओ, जो जीता हुआ अपने को मरा हुआ समझता है वो जीवन मुक्त है। आप जीवन मृत कहेंगे, हम जीवन मुक्त कहेंगे। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र समान भाव से देखने वाला आत्मा को सब भूतों में समान देखता है और सुख दुख में भी समान देखता है। ऐसी दृष्टि वाले को अपने और दूसरे के शरीर में भेद नहीं होता। किसी के शरीर में बीमारी आई, अरे बीमारी आ गई, जानकारी होगी पर भयंकर दुख नहीं होगा। ऐसे ही उसके शरीर में भी यदि भयंकर बीमारी आई तो वो कहेगा वो दुख नहीं होगा, जानकारी होगी, अरे शरीर में बीमारी आ गई, आ गई आ गई। जिसकी इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है वो कहीं पूजा के प्रमाद में फंसेगा? वो कभी इधर नहीं फंसेगा। वो समझता है शिव है, राम है, कृष्ण है, परमात्मा है, भगवान है, ये तो मेरे ही हैं। मैं इनसे अलग होकर और राम कृपा, राम और कृष्ण से पूजा करवाऊं और उनसे बढ़कर अपने को मानूं, इतना निकृष्टतम उनके कभी विचार आने वाला नहीं। सब लोगों की आंखें खोलने वाले पुरुष बहुत कम होते हैं। अच्छे पुरुष ही मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को स्वीकार करेंगे तो उन अच्छे पुरुषों में और कुत्तों में क्या अंतर है? मान बढ़ाई प्रतिष्ठा त्याज्य है, ये पाठ फिर कौन पढ़ाएगा? अच्छे पुरुष भी मान बढ़ाई की बात कहेंगे तो कुत्ते को तुत 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 तु करो वो पूंछ हिलाता आ जाएगा, धमकाओ डांटो तो भग जाएगा। वही वृत्ति हमारी रह गई, मान आदर सत्कार वाह वाह हम खुश हो गए और दुत्कारा अपमान किया तो मुंह कुमला गए। तो कुत्ते में हमारे में क्या फर्क है? कौन कहेगा कि मान बढ़ाई अच्छी नहीं है? कौन कहेगा? अच्छे पुरुषों में भी यही बात है, तब कौन कहेगा? वे ही पुरुष तो आदर्श होंगे जो स्वयं मान बढ़ाई का त्याग करेंगे। अच्छे पुरुषों को ये बात अपने आचरण से दिखलानी चाहिए। जो उच्च कोटि के पुरुष समझे जाते हैं, मान बढ़ाई को स्वीकार कर रहे हैं, अभी तो हम नहीं कहते आगे उनकी यमराज के यहां खबर ली जाएगी, आओ महापुरुषों का ये कर्तव्य है, उन्हें ये बार बार समाज को बताना चाहिए कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का त्याग असली चीज है। भाग्यशाली है वे पुरुष जिनके ये लफड़ा नहीं है, न कोई मान है, न कोई बढ़ाई है, न कोई स्तुति है। भाग्यशाली है वे, क्योंकि वे बहुत बड़े झंझट से बच गए, तूफान से बच गए, महती विपत्ति से बच गए। मान बड़ाई की जहां बोछार होती है उसके नजदीक नहीं जाते। वे लोग हमें कितना बढ़िया पाठ पढ़ा रहे हैं कि देखो हमारी न मान है न बड़ाई है न हमारी स्तुतियां हैं और हम कितने सुखी हैं। मान बड़ाई उनकी दृष्टि में जैसे त्यागने योग्य है, उनका कोई काम नहीं रुकता है, न भजन रुकता है न कोई खाना पीना रुकता है, जिनकी मान बड़ाई में खूब आराम से काम चलता है। सेवा करने वाली स्त्री है, स्वाभाविक ही बिचारी सेवा करती है, पर उससे यह कहना कि देख तू सेवा तो बहुत करती है पर थोड़ा प्रेम का व्यवहार तो करा कर, तू प्रेम से बोला कर, ऐसी जो भावना नहीं रखता है वह आदर्श पुरुष है। माने सेवा करने वाली स्त्री है और वो थोड़ा कड़ा बोल देती है, भाई लिखा हुआ बोलता हूं भाई नाराज मत होना, क्षमा करना, सेठ जी की वाणी है उनको तोड़ मोड़ के हम जैसे आदमी कैसे बोल सकते हैं। सेवा करने वाली स्त्री है परंतु उससे प्रेम से समझाकर सेवा नहीं कराता, वह आदर्श पुरुष है कि तुम्हें करती तो हो लेकिन प्रेम रखो, तुम ऐसा रखो, तुम मीठा बोला ऐसा नहीं कहते, आदर्श पुरुष है। घर में स्त्री रहते हुए भी मन से जो अलग रहता है ये खांडे की धार है। एकांत में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम है परंतु उससे भी उत्तम बहुत प्रशंसनीय यह है कि स्त्री के रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। गुलाब जल की बोतलें छिड़की जा रही हैं, वह महापुरुष वहां से भागता है, क्यों? वो देखता है कि अरे पेशाब छिड़क रहे हैं, पेशाब की बोछारें आती हैं, वो वहां जाना नहीं चाहता। विरक्त होकर वह वैराग्य को जनाना नहीं चाहता और हटना भी चाहता है। हजारों आदमी जिसको प्रणाम करते हैं वो अपने को बड़ा मानता है, उसको जाकर समझाओ कि ईश्वर के मंदिर में कितने आदमी जाकर उसको प्रणाम करते हैं, तो तुम बड़े हुए कि ईश्वर बड़ा हुआ? तुमने तो एक ही कसौटी लगाई, हमको लोग प्रणाम बहुत करते हैं, ईश्वर से ज्यादा करते हैं। और ये याद रख लो, चाहे कितने ही लोग आपको प्रणाम करें, कितने ही आप अपने को बड़ा माने, वह ईश्वर के यहां बड़ा नहीं है। इतनी बात तो कम से कम हृदय में बैठाओ। जो मान बड़ाई को न भीतर से चाहता है न बाहर से चाहता है, वह तो ईश्वर के यहां भी बहुत बड़ा होता है। तुम थोड़े से लोगों में बड़े होगे तो क्या हुआ? गुलाब जामुन है, वो गुलाब जल था यहां से, ये गुलाब जामुन खाने वाला गुलाब जामुन है। हमने सोचा लोगों को दे दो, फिर मालूम पड़ा कि हमें महात्मा समझकर ये प्रसाद लेंगे तो हमारा कर्तव्य है हम वह प्रसाद देवे ही नहीं। अभी यहाँ कटोर इतना बड़ा कटोर दान भर के क्या हमारे पास गुलाब जामुन है, हम दे रहे हैं आप, तो आप भगवान का प्रसाद समझ के ले रहे हो जितने, तो हमको खुशी होनी चाहिए। परंतु यदि यह समझ करके कि भाई ये साधु दे रहा है तो ये प्रसाद लेवे तो हम मेरा कर्तव्य देना नहीं चाहिए। और यदि आप में देने की भावना है तो आप में वो शक्ति होनी चाहिए कि प्रसाद देते ही उसका कल्याण होना चाहिए। यदि वो शक्ति नहीं है तो ये प्रसाद नहीं प्रमाद है, ये शास्त्र के आप कलंक लगा रहे हो। आपस में हम आपको जिमाते हैं, आप हमें, तो उस जिमाने में दोष नहीं है क्योंकि उसमें हमारे ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर सकता। भाई भोजन कराते हैं, भोजन करते हैं, महात्मा बनकर प्रसाद देते हैं, ये शास्त्रों के लिए कलंक है और महात्माओं के प्रति भी कलंक है। एक बड़ी गुप्त बात बताता हूं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको मैं कहना नहीं चाहता हूं, परंतु आप लोग थोड़े से हो इसलिए कहता हूं। सेठ जी ने कहा थोड़े से इसलिए कहता हूं, बिजली के करंट से छूने से सारे शरीर में सनसनी हो जाती है, दम करंट से सनसनी आ जाती है। ऐसे स्त्री को छूने से कामी आदमी के काम व्यापक हो जाता है, इसी प्रकार ईश्वर को छूने से प्रेम की लहरें उठनी चाहिए। महात्मा को छूने से भी ये बात होनी चाहिए, और यदि नहीं हो तो समझना चाहिए कि मेरे हृदय में बड़ी कमी है, कोई कारण है, अंतःकरण मेरा मलिन है। वास्तव में महात्मा ही महात्मा नहीं है तो हमारे क्या करंट दौड़ेगा, कोई तार यदि उसमें खुद में करंट नहीं है, उस तार को पकड़े रखो, पकड़ते ही करंट नहीं आता। या अश्रद्धा रूपी काठ के ऊपर खड़े हो तो करंट नहीं दौड़ेगा, लकड़ी हो करंट नहीं दौड़ेगा। जैसा जो पदार्थ है उसका असर पड़ेगा। आग को छुबेगो तो उसको गर्म परमाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगो, इसी प्रकार ईश्वर ने छुएगो तो ईश्वर को जो परमाणु है, अथवा महात्मा ने छुएगो तो महात्मा को जो परमाणु है वो अंदर प्रवेश करेगो। लालटेन यहां है, यहां से कोई ले गए हो तो प्रकाश चलो गयो, इसी प्रकार महात्मा पुरुष है, वे चले गए तो अंधकार की ज्यों संसार प्रतीत हुए। महात्मा है उसके दर्शन से परमात्मा की स्मृति होनी चाहिए। महात्माओं के पास देवी संपत्ति रूपी धन रहता है, क्षमा शांति दया उत्तम गुण बिखरते रहते हैं, समूह के समूह गुणों के समूह रहते हैं। जैसे चीज हो, जैसी चीज होती है वैसे उसका असर पड़ता है। हमारे हृदय में महात्मा के पास बैठने से अच्छी अच्छी स्फुरना होती है, तो समझना चाहिए किसी महात्मा का एक्स पड़ रहा है। और दूषित भाव तो समझना चाहिए कि हमारे आसपास कोई खराब पुरुष है। जो चीज जिसके पास होती है उसका असर पड़ता है। एक आदमी के पास में इत्र है, जेब में शीशी है, तो वो वहां सैकड़ों आदमियों में भी बैठेगो तो उन्हें चारों तरफ इत्र की गंध आवेगी। इसी प्रकार महात्मा में गुण होवेगो अपने आप असर पड़ेगो। और एक सूक्ष्म बात कह दूं, सूक्ष्म दोष हमारे लोगों में ऐसे प्रवेश करके रहते हैं जैसे प्लेग के परमाणु रहते हैं। इसका उदाहरण बताता हूं। मैंने आप लोगों से पूछा, क्यों आज कैसी बात सुनाई? आपने कहा, अजी बहुत अच्छी सुनाई, ऐसी अच्छी सुनाई, हमारे तो कांटे खुल दिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बात मैंने सुनी आप लोगों के मुख से तो मुझे यदि प्रसन्नता होती है तो समझना चाहिए मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के प्ले के परमाणु अंदर पड़े। मैं यदि यह कहूं कि देखो आपको इस प्रकार की बात बताई है, आपको ये बात कहीं नहीं मिल सकती, जो मान बढ़ाई को नहीं चाहता वही आपको यह मिलेगी, इसका क्या मतलब है? मैं यदि यह कह दूं कि आपको ये बात कहीं नहीं मिलेगी, क्या कि जो मान बढ़ाई को चाहता है वह आपको यहां ही मिलेगी, तो इसका मतलब है कि मैं मान बढ़ाई की प्रतिष्ठा चाहता, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहता हूं। अभी बात खुली नहीं कि इस प्रकार की मान बढ़ाई नहीं चाहने वाली बात जो मैं कह रहा हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो इसका अर्थ है कि मैं मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहता हूं। व्याख्यान देकर निर्लेप रहो, उसके अभिमान में मत चले जाना, ये बहुत सूक्ष्म बात है। जरा सा भी यदि व्याख्यान का अभिमान हो गया तो नीचे धसक जाओगे, जैसे नदी का पानी किसी टीले के पास से कुरेता कुरेता उसमें प्रवेश करता है, पता चलता नहीं, फिर जाकर वो ढह जाता है। ऐसे ही ये मान बढ़ाई अच्छी लगती रहती है, व्याख्यान देते रहते हैं, एकदम ढह जाएगी। मजबूती से करो, पहाड़ पर खड़े रहने के समान व्याख्यान देओ। पहाड़ के पास से नदी जाती है, कितनी सूख जाए या कितनी तेज चले पहाड़ पर असर नहीं होता। ऐसे निर्लेप रहकर मान बढ़ाई से अपने को बचा करके चलो, वही श्रेष्ठ पुरुष है। नारायण नारायण।